الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ انبیاء کی آیت 62-63 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. سیدنا ابراہیم کا استدلال زیر بحث ہے. انہوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ میری قوم کے لوگ اپنے شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں رکھتے، وہ یہی خیال کرتے ہیں کہ ان کے آبا نے جو دینی روایت قائم کی ہے وہ برحق ہے، اور آبا کی دینی روایت تنقید سے بالا تر سمجھنی چاہیے. چنانچہ یہی چیز ہے جو وہ میرے جواب میں کہہ رہے ہیں یا کہہ سکتے ہیں. اس لیے اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی نفسیات میں کیا گرا پڑی ہوئی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ شرک کے معاملے میں وہ گرا خوف کی گرا ہوتی ہے. انسان کو اس کی کمزوری کے کسی لمحے میں ایسا کوئی خوف گرفت میں لے لیتا ہے جس سے شرک کی بنیاد پڑ جاتی ہے. بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، کوئی بڑا حادثہ ہو گیا، دنیا کے حالات میں کچھ غیر معمولی صورت پیدا ہو گئی، انسان کو پے در پے سوء اتفاق سے سابقہ پیش آیا، یہ سب چیزیں انسان کی کمزوری کی وجہ سے، اس کے ضعف کی وجہ سے بعض اوقات اس کی عقل کو معطل کر دیتی ہیں. یہ خوف کی گرہ ہے جو جیسے جیسے کھلتی ہے اپنی جگہ پر ایک علم الاسنام بنتی چلی جاتی ہے، ایک مائتھالوجی بنتی چلی جاتی ہے. چنانچہ اس خوف کی گرہ کو کھولنے کے لیے اور اس کے سحر کو توڑ دینے کے لیے انہوں نے استدلال کا عملی طریقہ اختیار کیا. یہ استدلال کا عملی طریقہ ہے، نہیں یعنی منکر قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. میں اپنی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایک عملی تدبیر اختیار کر لیتا ہوں. وہی انہوں نے اختیار کی، اور جس طرح کے پچھلی نشست میں بیان ہو چکا ہے، بتوں کے سر کاٹ دیے، ان کو ریزہ ریزہ کیا، اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا. یہ ایک ایسی غیر معمولی تصویر بن گئی جو زبان حال سے ساری داستان سنا رہی تھی. چنانچہ جب لوگوں نے اگلے دن ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اسی بڑے نے توڑا ہوگا، یہ اسی کی کارستانی ہوگی، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. بعض لوگوں نے اس کو جھوٹ قرار دیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے جملے کو جھوٹ کوئی ملائے مکتبی ہی قرار دے سکتا ہے. یہ نہایت خوبصورت تاریخ ہے، استدلال کا نہایت دلاویز طریقہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا. چنانچہ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، اس فکرے میں نہ خوف کا کوئی شائبہ ہے نہ اسے جھوٹ قرار دیا جا سکتا ہے. یعنی جب انہوں نے اعتراف کرنے کے بجائے کہ یہ کام میں نے ہی کیا ہے، یہ کہہ دیا کہ کبیرہم ھذا بل فعلہ کبیرہم ھذا فسلوہم ان کنتم ان کانوا ینتقون، ابراہیم نے جواب دیا بلکہ ان کے اس بڑے نے کی ہوگی، تو انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. یہ کسی نہ خوف کی وجہ سے کہی گئی بات ہے، نہ اس میں کوئی جھوٹ کا شائبہ ہے. इस फिक्रे में न खौफ का कोई शायबा है, न इसे झूठ करार दिया जा सकता है। जिन लोगों ने इसे खौफ या किज़्ब पर महमूल किया है, यानी बाज़ लोगों ने ख्याल किया है कि ये मसलियत के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक झूठी बात कर दी, और बाज़ ने ये ख्याल किया है कि वो डर गए और खौफ की वजह से उन्होंने एतराफ़ नहीं किया। ये दोनों ही बातें बिल्कुल बेमानी, बिल्कुल गलत और आखिरी दर्जे की बेजौकी का नमूना है। जिन लोगों ने इसे खौफ या किज़्ब पर महमूल किया है, उनके बारे में इसके सिवा क्या अर्ज किया जा सकता है कि सुखन शनास नहीं दिलबरा खता इंजाज। बात को समझने का सलीका नहीं रखते। उनके यहाँ बात भी मंतिक और रियाजी होती है, बात में तंस, तारीस, मज़ा, एक ख़ास तरीके की तलमी, ये सब उसने बयान के मुख्तलिफ पहलू हैं। इसको अगर ताबीर कर सकते हैं, यानी अगर इस जुमले की हकीकत को खोला जाए, इसको अगर ताबीर कर सकते हैं, तो उस्ताज इमाम के अल्फाज में एक लतीफ़ तंज, एक पुरमानी इस्तेहज़ा और एक हकीमाना इस्तदराज से ताबीर कर सकते हैं। यानी तंज में आखिरी दर्जे की लताफत पैदा की जाए तो ये जुमला वजूद में आएगा। इसी तरीके से अगर आप किसी बेहकीकत चीज़ को मजाक का हदफ बनाना चाहें और उसमें मानी खेजी भी पैदा कर दें, तो इस जुमले को वो वजूद पजीर कर देगी। और एक हकीमाना इस्तदराज, यानि मुखातब को आप दर्जा बदर्जा उसकी हमाकत पर मुतनब्बे करते हैं और बड़ी हिकमत के साथ एक बात कहते चले जाते हैं और वहाँ पहुँचा देते हैं, तो इसको हकीमाना इस्तदराज कहते हैं। ये इस जुमले के बारे में बातें कही जा सकती हैं, ना इसमें कोई खौफ है ना किसी झूठ का कोई शायबा। इसको अगर ताबीर कर सकते हैं तो उस्ताद इमाम के अल्फाज में एक लतीफ़ तंज, एक पुरमानी इस्तेहज़ा और एक हकीमाना इस्तदराज से ताबीर कर सकते हैं। हकीकत यह है कि ये एक फ़िक्रा हज़ार तकरीरों पर भारी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कुछ कहना चाहते थे, यानी उन्होंने जो तकरीर करना थी वो नहीं की, जो कुछ वो कहना चाहते थे उन्होंने बिल्कुल ममस्सल करके दिखा दिया। यानी जिस बेबसी को वो वाज़े करना चाहते थे, अपने मुखातबीन की जिस हमाकत पर उनको मुतनब्बे करना चाहते थे, उनके तसव्वुरात के बेमानी होने को जिस जिस पहलू से वाज़े करना चाहते थे, वो अगर आध घंटे की तकरीर भी करते तो इस खूबी के साथ ये वाज़े नहीं हो सकते थे जिसको उन्होंने अपने एक अमली इकदाम से ऐसे वाज़े कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कुछ कहना चाहते थे वो उन्होंने बिल्कुल ममस्सल करके दिखा दिया है, वया उसकी तस्वीर कशी कर दी है कि जिनको माबूद समझते हो उनकी बेबसी देख लो, और ये भी देख लो कि अगर कायनात में बहुत से खुदा होते तो उनका कोई बड़ा भी इस तरह छोटे खुदाओं की किसी बात पर बिगड़कर सबका कचूमर बना डालता। ये तौहीद पर भी गोया एक नहायत हकीमाना इस्तदलाल कर दिया उन्होंने। ये हकीमाना इस्तदलाल व इस्तदराज और अहले शिर्क की तफजी व तजहीक का ऐसा उसलूब है कि इसकी शायद ही कोई दूसरी मिसाल पेश की जा सकती है। ये सैयदना इब्राहीम के उस जुमले की वजाहत है। बहरहाल जब ये बात उन्होंने कही तो जो कुछ वो चाहते थे वही हुआ, और कुरान मजीद ने देखिए उसकी कैसी तस्वीर कशी की है। पर रजऊ इला अनफुसिहिम, इस पर उनको यानी सुनने वाले लोगों को अपने बातिन की तरफ ज़रा तनब्बो हुआ, यानी वो बेवकूफ़ी और हमाकत जिस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको मुतनब्बे करना चाहते थे, लम्हे भर के लिए ख्याल हुआ कि है तो ये हमाकत ही की बात, ये नौजवान कह तो ठीक ही रहा है। दिल में ये बात आई और उन्होंने एक दूसरे से कहा, हकीकत में तुम ही जालिम हो, यानी तुम तो कह रहे थे कि जिसने इन बुतों को तोड़ा है वो जालिम है, حقیقت میں ظالم ہم ہیں۔ یہ بات ان کے دل میں آئی، رجوع ہوا، تنبہ ہوا، لمحے بھر کو ایک خیال کا پوندہ سا لپکا۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے یا اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے، تو لمحے بھر کے لیے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر سلامتی تباہ ہو، اپنی تربیت کی ہو، آدمی نے خدا ترسی اور خدا خوفی کی زندگی بسر کی ہو، تو یہی لمحہ ایک قیمتی لمحہ بن جاتا ہے اور انسان کو کسی حماقت سے نکال لیتا ہے۔ یعنی یہی لمحہ ہوتا ہے جس میں ایک بجلی کی طرح، ایک کوندے کی طرح گویا حقیقت لپک کر سامنے آتی ہے اور انسان کے دل میں اس کی روشنی اتر جاتی ہے۔ اب وہ اس کو پکڑ لے یا آنکھیں موند لے، دونوں ہی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کے موقعوں پر فوراً سر جھٹکتا ہے کہ یہ کیا، میں اپنی غلطی مان رہا ہوں؟ تو گویا ہم احمق تھے، ہمارے آبا احمق تھے، ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے یہ خرابی پیدا کی، یہ بات کیسے مانی جا سکتی ہے؟ تو پھر وہ سر جھٹک کے اٹھتا ہے اور اپنے پرانے استدلال کی بھول بھلیاں میں کھو جاتا ہے۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن نے اس نفسی تصویر کو نمایاں کیا ہے کہ اس وقت کیا ہوا پھر جب اتنی غیر معمولی بات انہوں نے کہی، ایسا طنز کیا کہ گویا جا کے دلوں میں ترازو ہو گیا، بات سننے والوں پر واضح ہو گئی، لیکن اندر ہی اندر ایک کیفیت گزری، اعتراف بھی ہوا، انہوں نے ایک دوسرے کو یہ کہہ بھی لیا، حقیقت میں تم ہی ظالم، یعنی تم تو بتوں کے توڑنے والے کو ظالم کہہ رہے تھے، ظلم تم نے اپنی جانوں پر کیا ہے کہ ایسی احمقانہ چیز عقیدے کے طور پر اختیار کر لی ہے جس کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ تم بتوں کے توڑنے والے کو ظالم کہہ رہے تھے، لیکن اس نوجوان نے جس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے، اس سے تو یہی واضح ہو رہا ہے کہ ظالم وہ نہیں بلکہ ظالم تم خود ہو جو ان گونگے اور بہرے پتھروں کو معبود بنائے بیٹھے۔ لمحے بھر کے لیے اعتراف بھی ہو گیا، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی بات جو میں نے عرض کی کہ حقیقت ایک بجلی کے کوندے کی طرح لپکتی ہے، اس کو انسان کو آگے بڑھ کے پکڑنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے سلامتی تباہ بھی چاہیے، تربیت بھی چاہیے، انسان میں حوصلہ اور ہمت بھی چاہیے۔ وہ پکڑ لیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی اس کو کسی باطل پر قائم نہیں رکھ سکتی۔ لیکن بالعموم انسان اس مرحلے سے گزرتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے بارے میں تو تجربہ ہے کہ بار بار گزرتے ہیں لیکن پھر سر جھٹک کے اسی راستے پر نکل جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے بتایا کہ یہی ہوا، اس پر ان کو اپنے باطن کی طرف ذرا تنبہ ہوا، تھوڑی دیر کے لیے ذرا بیدار ہوئے، آنکھیں کچھ کھلیں، خیال ہوا کہ بات تو یہ نوجوان ٹھیک کہہ رہا ہے، اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا حقیقت میں تم ہی ظالم ہو، لیکن پھر اوندے ہو گئے۔ انسان جس وقت یہ دیکھتا ہے کہ میرے اس اعتراف کے نتائج کیا ہوں گے، ماننا پڑے گا کہ میں، میرے گرد و پیش کے لوگ، میرے اقابر سب احمقانہ باتیں کرتے رہے ہیں، یہ ماننا پڑے گا، یہ مشکل چیز ہے۔ چنانچہ پھر انسان پلٹتا ہے، پلٹتا ہے تو بات بناتا ہے، یعنی جیسے بیداری کے ساتھ یا صحت فکر کے ساتھ وہ لمحے بھر کے لیے متوجہ ہوا تھا، پھر وہ بات بناتا ہے، پھر وہ دلیل ڈھونڈتا ہے، پھر وہ گریز کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جیسے روشنی کی طرف لپک رہا تھا، یک بیک لگتا ہے کہ جیسے اس نے اپنا رخ پلٹ کر اپنی گدی اس کی طرف کر لی اور منہ دوسری طرف پلٹا لیا ہے۔ یہ جو کیفیت ہے، اس کو قرآن مجید نے ثم نکسوا علی رؤوسہم میں ادا کیا ہے، یعنی پھر ان کے چہرے پلٹ گئے، پھر وہ اوندھے ہو گئے۔ लेकिन फिर औंधे हो गए और बोले, तुम्हें मालूम ही है कि ये बोलते नहीं हैं, यानी कैसी बातें कर रहे हो, ये कह रहे हो कि इनसे पूछ लो अगर ये बोलते हो, तुम्हें नहीं मालूम, तुम भी जानते हो कि ये बोलते नहीं हैं। इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि ये औंधे होकर आदमी जब इस्तदलाल करता है तो कैसी अहमकाना बात कर गुजरता है। बाज़ औक़ात एतराफ़ इनकार के उसलूब में अदा हो जाता है, और यही हुआ है यहाँ। लेकिन फिर औंधे हो गए, इस पर मैंने लिखा है यानी ज़रा देर के लिए उन्होंने आँखें खोली, लेकिन इसके बाद फौरन ही असबियत के जज्बात उभर आए। असबियत का मतलब ये होता है कि जिन चीज़ों से मैं ज़िंदगी भर वाबस्ता रहा हूँ, वो मेरे अफकार भी होंगे, मेरे ख्यालात भी होंगे, फिर उन अफकार और ख्यालात के साथ एक तारीख बन जाती है। उस तारीख में हाल और माजी में बड़ी गैर मामूली शख्सियात वाबस्ता होती हैं, वो सब की सब चीज़ें हैं जो मेरे अंदर एक ताल्लुक़ की कुव्वत पैदा करती हैं, उसको असबियत कहते हैं। तो ये असबियत बड़ी जज्बाती चीज़ है, उभर के सामने आ गई। यानी ज़रा देर के लिए उन्होंने आंखें खोली, लेकिन इसके बाद फौरन ही असबियत के जज्बात उभर आए और उन पर जहालत सवार हो गई। यानी वो जज्बात फिर जहालत में तब्दील हो जाते हैं। जिस तरह मैंने पिछली नशस्त में अर्ज़ किया था कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उनसे सवाल किया है, पहला सवाल, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये हमारे आबा की रवायत है, तो इसका मतलब ये था कि इल्म का सवाल है और जहालत का जवाब है, यानी दोनों में कोई रब्त नहीं है। इस्तदलाल नहीं पेश किया गया। यहाँ भी यही हुआ, जैसे ही असबियत के जज्बात उभर आए उन पर जहालत सवार हो गई, जिसका लाजमी नतीजा यही होता है कि आदमी की अकल औंध जाती है। यानी अकल का काम है कि वो सीधे तरीके से आगे बढ़े। अकल अपनी फितरत के लिहाज से सिराते मुस्तकीम तलाश करती है। अकल का काम यही है कि वो इस्तदलाल के मुकदमात उस्तवार करके आगे बढ़े। लेकिन फिर ऐसे हुआ कि जैसे अकल की चाल उलट दी गई हो, और फिर वो एक बिल्कुल दूसरे तरीके की बात करना शुरू कर देती है। यही जहालत, यही जज्बात की ताकत है जिसमें इंसान बह जाता है। तो ये हुआ उनके साथ, और बोले, तुम्हें मालूम ही है कि ये बोलते नहीं हैं। इस पर मैंने लिखा है, यही वो मकाम है जहाँ हज़रत इब्राहीम अपने हरीफों को लाना चाहते थे। यानी वो यही बात कहना चाहते थे, चुनाचे खुद हरीफों की ज़ुबान से अदा हो गई। तुम्हें मालूम ही है कि ये बोलते नहीं हैं, तो ज़ाहिर है कि फिर आगे कुछ कहने की ज़रूरत बाकी नहीं रही, कि ना ये बोलते हैं, ना ये सुनते हैं, ना ये अपनी मुदाफ़त कर सकते हैं। जिन शख्सियात या जिन तसव्वुरात को इनके पीछे मानते हो, उनका खुद अपनी ही इन मूर्तियों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्या चीज़ है इसको पूछ रहे हो, यानी तुम भी जानते हो कि ये बोलते नहीं हैं। यही वो मकाम है जहाँ हज़रत इब्राहीम अपने हरीफों को लाना चाहते थे, चुनाचे उन्होंने लाखड़ा किया और वो एतराफ़ शिकस्त के लिए मजबूर हो गए। ये दूसरे लफ्ज़ों में फ्री शिकस्त का एतराफ़ का मतलब ये है कि कुछ भी बोलने के लिए और कुछ भी कहने के लिए बाकी नहीं रहा। सुम्मा नुकिसु अला रऊसिहिम लकद अलिमता मा हाउलाए यंतकून। लेकिन फिर औंधे हो गए और बोले, तुम्हें मालूम ही है कि ये बोलते नहीं हैं। काल इब्राहिम ने कहा, अफ़ताबुदून मिन दूनिल्लाही मा ला यन्फौकुम शैय्यं वला यदुर्रुकुम उफ़्फिल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दूनिल्लाह अफ़ला ताकिलून। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरी बात फिर कही है। इब्राहिम ने कहा, फिर क्या अल्लाह के सिवा उन चीज़ों की परस्तिश करते हो जो तुम्हें ना कोई नफ़ा पहुंचा सके ना नुकसान, यानी फिर पूछते क्या हो, बोलते नहीं हैं, तो फिर इनके पास आके अपनी अर्ज़दाश्त किस लिए पेश करते हो। अगर सुनते नहीं हैं तो इनके सामने आकर मुनाजात और दुआओं के लिए हाथ क्यों फैलाते हो। खाते हैं ना पीते हैं, तो इनकी खिदमत पे ये नजरें और न्याज किस लिए पेश करते हो? तो परस्तिश के जितने आदाब हैं, फिर क्या इन लोगों अल्लाह के सिवा उन चीज़ों की परस्तिश करते हो जो तुम्हें ना कोई नफ़ा पहुंचा सके ना नुकसान, जो अपने नफ़े नुकसान का कुछ एहतमाम ना कर सके, अपने आप को एक नौजवान की ज़र्ब से ना बचा सके, तो इन लोगों को माबूद बना के बैठे हुए हो, इनको पूजने के लिए यहाँ आते हो, इनके लिए इतने बड़े बड़े माबद बना रखे हैं, इनके बारे में दास्तानें सुनाते हो, इनके लिए असातीर वजूद पजीर करते हो, क्या हमाकत है तुम्हारी? फिर उन्होंने फरमाया कि बेजार हूँ तुमसे मैं और उनसे भी जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो, फिर क्या समझते नहीं? अफला ताकिलून, यानी अकल से काम नहीं लेते? ये सब मानते हो, ये जानते हो कि बोलते नहीं हैं, तुमने एतराफ़ कर लिया इसका, इसके कुछ नतायज हैं, वो अकली नतायज तो सामने पड़े हुए हैं, पेश पा उफ्तादा हैं, ये क्या बात है? फिर उसके बाद औंधे हो जाते हो, इतनी सी बात समझ में नहीं आती। इस पर मैंने हाशिया लिखा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया था इसी हकीकत की तबलीग के लिए किया था। ये जो कुछ उन्होंने अब फरमाया है वो यही बात पहुंचाना चाहते थे। जब उन्होंने बेबसी के उस मकाम तक उनको पहुंचा लिया कि जहां अब बात करने की गुंजाइश नहीं रही, तो फिर सख्त तंबीह के अंदाज में ये कहा कि ये हैं जिनकी पूजा के लिए तुम मुझसे बात करते हो, तो फै तुम पर, ये तो सिर्फ बेजारी ही की चीज़ है, इनकी तरफ मैं इल्तफात करूं, मैं इनकी परस्तिश करूं? ये तुम्हारी अकल अगर मारी गई है तो मेरे बारे में क्या ख्याल कर रहे हो? तो अपनी बेजारी का इजहार करते हुए उन्होंने उनको तवज्जो दिलाई। उस्ताद इमाम लिखते हैं, ये तकरीर, यानी ये जो उन्होंने चंद जुमलों में अपनी बात कही है, ये तकरीर जाहिर है कि बुतों की बेबसी को इस तरह आशकारा कर देने के बाद जितनी मौसर हो सकती थी उसके बगैर इतनी मौसर नहीं हो सकती। यानी यही तकरीर अगर इससे ज़्यादा वजाहत के साथ और सराहत के साथ भी की जाए तो मुखातब 10 बातें करने के लिए रास्ते निकाल लेगा, लेकिन उन्होंने अपनी बात को ऐसे ममस्सल करके दिखा दिया कि अब मुखातबीन के लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह गई। इसके बगैर अगर यही बात उनके सामने लाई जाती तो वो इसके जवाब में 100 बातें बना सकते थे, लेकिन अब जबकि वो पाश पाश होकर सामने पड़े हुए, यानी उनके बुत, उनके माबूद, लेकिन अब जबकि वो पाश पाश होकर सामने पड़े हुए अपनी ज़ुबाने हाल से अपनी बेहकीकती और बेबसी की कहानी खुद ही सुना रहे थे, तो उनके पुजारी उनकी हिमायत में क्या चीज़ पेश कर सकते? किसी के पास भी कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा, और जब कुछ कहने के लिए बाकी न रहे तो फिर रद्द अमल पैदा होता है। रद्द अमल की सूरतें हालात के लिहाज से मुख्तलिफ होती हैं। अगर इस तरह के रवायत परस्तों के पास इकतदार हो, ताकत हो, तो फिर वो अदालत लगाते हैं, फिर वो सजाएं देते हैं, फिर वो पैगंबरों तक को कत्ल करने से बाज नहीं आते, जिस तरह के बनी इसराइल की तारीख में हम देखते हैं, और ख़ुद रिसालत मआब के बाद मुसलमानों की तारीख से भी इसकी मिसालें पेश की जा सकती हैं। और अगर ताकत ना हो, इकतदार ना हो, तो फिर इल्ज़ाम तराशी होती है, फिर तरह तरह के बहाने तराशे जाते हैं, फिर दूसरों की नीयतों और उनके मुहर्रकात पर हमले किए जाते हैं, फिर उनके इस्तिख़फ़ाफ़ की राहें निकाली जाती हैं, फिर ये दूसरे हरबे हैं जो आम तौर पर लोग इख्तियार करते हैं। ये चूँकि एक कबायली मुआशरत है, इसमें मज़हबी लोगों के पास बड़ी ताकत होती है, तो चुनाचे जो ताकतवरों का रद्द अमल है वही हुआ। बात जब यहाँ पहुँच गई, यानी कहाँ पहुँच गई, जहाँ दलील ख़त्म हो गई, यहाँ अब बात करने की गुंजाइश नहीं रही, आखिरी दर्जे में सैयदना इब्राहीम ने अपना मुद्दा वाज़े कर दिया। जब ये हो गया, आलू हर्रकू हो वन शुरू वालेहतकुम इन कुन तुम फाइलिन, इस पर वो बोले कि अगर कुछ करने का इरादा है, अगर कुछ करने का इरादा है, ये कुरान मजीद ने एक शर्तिया जुमले में पूरी दास्तान बंद कर दी। मतलब यह है कि उसके बाद शोर वगा हो गया, आपस में इस्तेदलाल शुरू हो गया। किसी ने ये कहा कि इस नौजवान के साथ ये होना चाहिए, किसी ने कहा वो होना चाहिए। अब मुख्तलिफ तदबीरों पर हर शख्स दादे सुखन दे रहा है। जब इस तरह की हंगामा आरई हुई और उसमें मुख्तलिफ तदबीरें ज़ेर बहस आ गईं कि ये सख्त गुस्ताख हमारे यहाँ पैदा हो गया है, इसने ये क्या बात कर दी है, देखिए आज़र का बेटा है और किस तरीके से हमारे बुतों की इसने तौहीन की है। यानी अब दलील चूँकि ख़त्म हो चुकी है तो एहानत तौहीन, एहानत का मुकदमा तौहीन का मुकदमा, अब सूरत हाल बिल्कुल दूसरी हो गई। उसमें कुरान मजीद ने ज़ाहिर है कि उस गौगा को नकल नहीं किया, खुलासा कर दिया इसमें कि बात जब यहाँ तक पहुँची तो लोगों ने कहा कि अगर कुछ करने का इरादा है, यानी अगर फिलवाके इस नौजवान का कोई इलाज करना है, संजीदा हो तुम लोग तो हम बताते हैं क्या किया जाए। इस पर वो बोले कि अगर कुछ करने का इरादा है तो इसको आग में जला दो, यानी तौहीन के जुर्म की ऐसी इबरतनाक सज़ा दो कि हमारे कबीले में, हमारी सोसाइटी में कोई शख्स कल इसकी जसारत न कर सके। ये उन्होंने वह आखिरी सज़ा सुना दी। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक ज़माने तक मज़हबी लोगों को अपने अपने इलाकों में, अपनी जगहों पर ये इख्तियारात रहे हैं, खुद करीब की तहजीबी रवायत में भी रहे हैं। चुनाचे उन्होंने ख्याल किया कि इसको जला देने की सज़ा देनी पड़ेगी, इसको आग के अलाव में डालें, इसका खात्मा कर दें। इस पर वो बोले कि अगर कुछ करने का इरादा है तो इसको आग में जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। यानी ये वक्त है, ये माबूदों को तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता। अब ये इन बुतों का नामूस है, इस नापूस की हिफाजत की अंजुमन बननी चाहिए और आइंदा से किसी आदमी को ये जुरत ना हो कि हमारे इन माबूदों के नामूस पर इस तरीके से हमला कर दे। इसका इलाज अब यही है कि इसको आग में जला दिया जाए। मैंने लिखा है, मतलब ये है कि अगर इस वक्त इस फितने का सद्देबाब ना किया गया तो आबाओ अजदाद का दीन तबाह होकर रह जाए। ये तो अभी पता है, इसने तो पहला कदम ही गैर मामूली तौर पर उठा दिया है, पहले दिन ही बात शुरू की है और आकर कुल्हाड़ा रख दिया है हमारे बड़े बुत के कंधे पर। अगर इस वक्त इस फितने का सद्देबाब न किया गया तो आबाओ अजदाद का दीन तबाह होकर रह जाएगा। इसलिए अभी उठो और अपने माबूदों की हिमायत में इस नौजवान का खात्मा कर, ये इलाज है इसका। इससे कम कोई दूसरी तजवीज़ मुअस्सर ना होगी। इस वक्त यही एक तरीका है जिससे हम दीन को बचा सकते हैं। इसमें ये बात भी मुजमर है कि सैयदना इब्राहिम ने जो कुछ किया, कुछ ना कुछ लोगों पर भी उसके असरात हुए। बहुत से लोगों ने दिलों में ये जान लिया कि बात तो ठीक कह रहा था ये नौजवान, खुद उनकी ज़ुबान से भी एतराफ़ के जुमले निकल गए। इसका मतलब ये था कि बीज डाल दिया है इस शख्स ने, अब नहीं कहा जा सकता कि कब बरगोबार ले आए। इसका कला कमा कर देना चाहिए, इसकी गुंजाइश ही नहीं छोड़नी चाहिए कि कोई शख्स दोबारा इस तरह की जसारत करे। इस पर वो बोले कि अगर कुछ करने का इरादा है तो इसको आग में जला दो और अपने माबूदों की मदद करो। फरमाया जिस वक्त उन्होंने ये बात कही और फिर सबका इत्तेफाक भी हो गया और एक वक्त आ गया कि तदबीर करके उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के हवाले कर दिया। कुलना या नारु कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहीम व अरादू बिही कैदन फजालनाहुमुल अख्सरीन। फरमाया चुनाचे इब्राहीम को आग में झोंक दिया गया, तब हमने हुक्म दिया कि आग तो इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और सलामती बन जा। उन्होंने चाहा था कि इब्राहिम से निजात के लिए उसके साथ एक चाल चलें, مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام بنا دیا۔ یہ خلاصہ کر دیا قرآن مجید نے، اس کی کچھ تفصیلات پر گفتگو کریں گے۔ اب ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر